नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने 40 एकड़ में फैले रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, लघु और मध्यम उद्योगों और युवाओं के लिए भी अनेक नए अवसर लेकर आएगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हर देश इस संकट से निपटने के प्रयास कर रहा है।
भारत बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर इस संकट का बोझ न पड़े।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और अन्य नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट की आज सवेरे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक इंजन में खराबी के संदेह में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। 161 यात्री वाली ये फ्लाइट विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रही थी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार सुबह 10:39 पर हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। मंत्रालय ने बताया कि फ्लाइट सुबह 10:54 पर सुरक्षित रूप से लैंड कराई गई और अब हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता में आयोजित जानो गोनर चार्जशीट कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अवैध अप्रवासन, अराजकता और आर्थिक संकट की समस्या को भी उजागर किया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में दो समुदायों के बीच तीन स्थानों पर हुई झड़पों के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब बढ़कर 30 हो गई है। इनमें एक धार्मिक संगठन के दो नेता भी शामिल हैं। उपद्रवियों की तलाश जारी है। अमरीका में व्यापक शोध के बाद तीन अमूल्य प्राचीन मूर्तियां भारत लौट रही हैं। शोध में पुष्टि हुई है कि इन मूर्तियों को अवैध रूप से देश से बाहर ले जाया गया था। इन मूर्तियों में 9वीं सदी की शिव नटराज की कांस्य प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की शिव और उमा की सोमस्कंद प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की संत सुंदरार और परवी की प्रतिमाएं शामिल हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुए जेनजी के विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार द्वारा पिछले साल जेनजी के विरोध प्रदर्शनों पर जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के एक दिन बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली को काठमांडू से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूर्व गृहमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक को भी उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। जेनजी आंदोलन से संबंधित घटना की जांच के लिए गठित जांच आयोग ने ओली और लेखक सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
आईपीएल क्रिकेट का 19वां संस्करण आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।